ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। श्रीराजोवाच समः प्रियः सुहृत् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्य अर्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमः यथा श्रीराजोवाच समः प्रिया सुहृत् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमः यथा श्रीराजोवाच समः प्रिया सुहृत् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमः यथा श्रीराजोवाच समः प्रिया सुहृत् ब्रह्मन् भूतानां ईश्वर भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत् विषमः यथा। श्रीराजोवाच समः प्रिया सुहृत् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं राजोवाच समः प्रिया सुहृत् ब्रह्मन् इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् श्रीराजोवाच Yeah. माताएं समप्रिय सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधि विषम यथा शब्दार्थ श्रीराज उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा समान प्रिय प्रिय श्रीहित मित्र ब्राह्मण हे ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी भूतानाम समस्त जीवों के भगवान परमेश्वर विष्णु स्वयं इंद्रस्य इंद्र के अर्थे लाभ के लिए कथम कैसे दैत्यान असुरों को अवधित मारा विषमः पक्षपात जथा मानो अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद राजा परीक्षित ने पूछा हे ब्राह्मण भगवान विष्णु सबके शुभचिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय है तो फिर उन्होंने किस तरह इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा सबके प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति किस तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रुभाव रखेगा। तात्पर्य भगवद गीता के नवम अध्याय के 29 नंबर श्लोक में है भगवान कहते हैं समहं सर्वभूतेषु नमे द्वेष्य अस्ति न प्रियः मैं सबों पर समभाव रखता हूं न तो कोई मुझे प्रिय है न कोई मेरा शत्रु है। किंतु पिछले स्कंध में यह देखा गया है कि भगवान ने इंद्र के लिए असुरों का वध करके उसका पक्षपात किया हतः पुत्रादिति चक्र पाणि विष्णु ग्रहेण विष्णुना अतएव भगवान भगवान स्पष्टतः इंद्र के पक्षधर थे यद्यपि वे सबके हृदय में स्थित परमात्मा है। जिस तरह सबको आत्मा अत्यंत प्रिय है उसी प्रकार सबको परमात्मा भी प्रिय है अतएव परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना भगवान सभी जीवों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र का पक्ष समर्थन किया यही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का विषय था। कृष्ण भक्त के रूप में वे यह भलीभांति जानते थे कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते किंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया तो उन्हें कुछ संदेह होने लगा अतः उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने के लिए सुखदेव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछा। भक्त यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। महाराज परीक्षित भलीभांति जानते थे कि दिव्य होने के कारण भगवान विष्णु को भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है किंतु आपने इस विचार की पुष्टि के लिए वे सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे क्योंकि वे अधिकारी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं समस्या कथं वैषम्यम क्योंकि भगवान समदर्शी है अतः वे किसी का पक्ष ग्रहण क्यों करेंगे। प्रियस्य कथम असुरेषु प्रीत्यभावः परमात्मा होने के कारण भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय है तो फिर भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लगेंगे यह पक्षपात किस लिए। सुहृदश्च कथं तेषु सौहार्द्यम्। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे सुहृदं सर्वभूतानां अर्थात समस्त जीवों के शुभचिंतक है, तो फिर वे द्वैतों का बध करके पक्षपात क्यों करते हैं, ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे। अतः उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न किया। ओम अज्ञानाति मिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साअवधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ द्वंदी प्रणाम समये सह गणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो अभी नृसिंह चतुर्दशी आने वाला है, कब? 13 तारीख को। तो इसलिए अभी नृसिंह चतुर्दशी तक नृसिंह कथा, भगवान नृसिंहदेव की कथा, बा नृसिंह प्रह्लाद की कथा की चर्चा की जाएगी। किस लिए इसको सुनने का क्या महत्व, किस लिए हम ये नृसिंह और प्रह्लाद की कथा को सुनेंगे, क्या उद्देश्य है? सुखदेव गोस्वामी कहते कि एतद्य आदि पुरुषस्य मृगेन्द्र लीलां दैत्येन्द्र जूथ पवधं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं सुत्वानुभावं अकुत भयं एते लोकम। प्रह्लाद महाराज भक्त में सर्वश्रेष्ठ थे, जो कोई प्रह्लाद महाराज के कार्यकलाप को हिरण्यकशिप के वध तथा भगवान सिंहदेव की लीलाओं से संबंध इस कथाओं को अत्यंत मनोयोग से सुनता है वह निश्चित पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहां कोई चिंता नहीं रहती है। अर्थात यदि हम ध्यान पूर्वक इस नृसिंह कथा को प्रहलाद नृसिंह कथा को सुनेंगे कीर्तन और श्रवण करेंगे तब तो जन्म मुक्ति संसार से मुक्त होकर भगवान के नित्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए बड़े सावधान से कथाओं को सुनना जरूरी है। ये पहला अध्याय से लेकर दसम अध्याय तक दस अध्याय पूरा नृसिंह कथाओं की विशेष रूप में चर्चा हुई, भगवान किस प्रकार क्यों अवतार लिए और अवतार लेकर कैसे लीलाओं को प्रकट किए, अपने भक्तों को कैसे प्रहलाद को कैसे रक्षा किए, क्योंकि भगवत श्रीमद भागवतम की जो दस विषय वस्तु है अतः स्वर्ग विसर्गश्च पोषण स्थानमुतय मनोन्तर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय, ये दस टॉपिक से ये जो विषय ये जो चरित्र हम अभी चर्चा करेंगे इसमें कौन सा विषय वस्तु का चर्चा होगा है, किस विषय पर चर्चा होगा इसे अभी जो दस नृसिंह प्रहलाद की कथा पोषण, भगवान ने किस प्रकार अपने भक्तों की पोषण करते हैं, कैसे अपने भक्तों की विशेष रूप में देखभाल करते हैं, और गौरांग महाप्रभु विशेष रूप में प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र को बार बार सुनते थे किनसे, गदाधर पंडित से है? स्वयं गौरांग महाप्रभु भी नृसिंह ही है, सबसे पहला जो भगवत्ता की परिचय दिए उन्होंने शिवा संगन में, तो किस रूप में दर्शन दिए सबसे पहले नृसिंह रूप में है? ऐसा ही भगवान जगन्नाथ भी जब महाराज इंद्रदीप ने को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब रत्न वेदी पर सिंह प्रतिष्ठित हो गए जगन्नाथ और उन्होंने कहे कि इंद्रदीप ने को दर्शन करने के लिए जाए दर्शन कीजिए, तो किस रूप में देखे सबसे पहले जगन्नाथ जी को, नृसिंह के रूप में भीषण उग्र नृसिंह की मूर्ति में, उग्र नृसिंह दर्शन के तुरंत भयभीत होकर आ गए वापस है? तो फिर ब्रह्मा जी ने जाकर इनको शांत कराए हैं, इसलिए उग्र नृसिंह के सामने वो स्तुति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पाठ किए थे, श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह उग्र वीरंग महाविष्णु ज्वलंत सर्वतोमुखम नृसिंह भीषण भद्रंग मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम, श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। इसलिए सभी नृसिंह गौरांग महाप्रभु स्वयं को नृसिंह रूप में दर्शन दिए, भगवत का परिचय करते हैं सबसे पहले, जगन्नाथ भी स्वयं को नृसिंह के रूप में दर्शन दिए है, और भगवान श्री कृष्ण केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। इसलिए भगवान के नृसिंह की कथाओं को सुनने से श्रवण कीर्तन करने से सुखदेव गोस्वामी कहते कि हम जन्म मृत्यु संसार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रसंग को जब प्रारंभ करते हैं श्रीधर स्वामी जब इस सप्तम स्कंद की प्रारंभ करते हैं पहला श्लोक के, उन्होंने अपने भाव टीका लिखने के पहले इन्होंने कहते कि उन्होंने नृसिंहदेव को प्रणाम करते हैं, सुभक्त पक्षपातेन तद विपक्ष विदारणम नृसिंहम अद्भुतम वंदे परमानंद विग्रहम। श्रीधर स्वामी सबसे पहले स्तुति करते हैं, इसके बाद अपने टीका प्रारंभ करते हैं, क्योंकि स्वयं भी नृसिंह भक्त थे, कौन श्रीधर स्वामी स्वयं नृसिंह भक्त थे, तो नृसिंह की कृपा से उन्होंने भागवत की टीका लिखे थे। श्रीधर स्वामी की जन्मस्थान हम हमारे ओडिशा में रेमुणा जहां पर खेरुचा गोपीनाथ मंदिर है उसे 5 किलोमीटर दूर पर मयूर ग्राम थे उनके स्थान जन्मस्थान है, ऐसे ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे, लेकिन कहा जाता कि बचपन से इतने बुद्धिमान नहीं थे, उनकी पितृवियोग हो गया था, माता जी थी और वहां के जो लोकल राजा थे एक बार उनके गांव में से भ्रमण में गए थे, देख रहे थे कि ये जो बालक है छोटा बालक उसकी माँ ने इसको कुछ माने दुकान से कुछ लेने के लिए दिए, तेल लाने के लिए इसे भेजे थे, लेकिन उसमें बोतल के नीचे छिद्र था, तेल लेके आता था, फिर माँ के पास पहुंचते ही सब समाप्त हो जाता था, गिर जाता था, उसको पता नहीं चलता। फिर दोबारा पैसा लेके जाता, फिर दोबारा ऐसे बार बार देखते थे, राजा मंत्री देखते। राजा ने कहा कि ऐसे ऐसे और बुद्धू बालक कोई संसार में नहीं होगा। मंत्री को बोले कि देखो, कि उनके मंत्री जो थे वो हमेशा कहा करते थे, मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम, वो सब समय कहते थे। तो कहे कि आप ऐसे गा रहे हो कि इसको देखे, ये मूर्ख बालक को यदि आप ऐसे सबसे बड़ा दिव्य पंडित बना दोगे तब तो मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी भगवत विश्वास के साथ मैं भी विश्वास कर पाऊंगा। इसलिए मंत्री ने इसका चैलेंज लिए, बालक को लेके गए साथ में, उनकी माताजी से बात करके उनको भी ले गए। माताजी का और सबके देखभाल हुआ राजभवन में। तो बच्चे को उन्होंने गुरुकुल में पढ़ने के लिए एडमिशन, लेकिन इसको नृसिंह मंत्र में दिखे, इसको दीक्षित करके नृसिंह मंत्र को जपने की सिखाए। ये जो नृसिंह मंत्र जपते 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 उसी में सिद्धि प्राप्त की, कौन? श्रीधर स्वामी। इसलिए श्रीधर स्वामी भी नृसिंहदेव की कृपा से ही श्रीमद भागवत की टीका लिखे हैं। नृसिंह कृपा के कारण ये सबसे पहला प्रामाणिक टीका। और कोरांग महाप्रभु कहते कि नृसिंह ने श्रीधर स्वामी को गुरु करी मानी। इसलिए कोई भी टीकाकार जो श्रीधर स्वामी के टीका के साथ कुछ विरोधाभास देता तो उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो श्रीधर स्वामी भी ये प्रसंग लिखते जो प्रारंभ करते हैं, तो सप्तम स्कंद की टीका सबसे पहला श्लोक में ही प्रारंभ की स्तुति करते हैं नृसिंहदेव की है। जो स्वभक्त पक्षपात है ना, अपने भक्त की पक्षपात अर्थात परित्राणाय साधुनां तद विपक्ष विदारणम विनाशाय च दुष्कृतम नृसिंहम अद्भुतम वंदे परमानंद विग्रहम। ओ नृसिंह भगवान को मैं जो अद्भुत नृसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जो परमानंद विग्रह है। तो इस प्रकार दूसरे की आप नृसिंह चतुर्दशी का, मैंने हम सोचते कि साधारण हमारे मन में जो आइडिया है कि नृसिंह चतुर्दशी के जो व्रत है उसको क्यों हम व्रत करते हैं, नृसिंह चतुर्दशी का विशेष व्रत क्यों पालन करते हैं, क्या कारण है? उस दिन नृसिंहदेव आविर्भाव हुए थे, कहां से? खंभे से। लेकिन पुराण में कहा गया कि नृसिंहदेव और खंभे के पकड़ होकर क्या किए थे, हिरण्यकशिपु विदारण। लेकिन हिरण्यकशिपु का पता था कि वरदान ये भी था कि पुराणों से 12 महीने में किसी महीने में मरेगा नहीं है? ये भी वरदान था। ये केवल नहीं कि जल से नहीं मरेगा, स्थल से नहीं मरेगा, आकाश में नहीं मरेगा, और दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, इसी के साथ भी 6 ऋतु 12 महीना भी नहीं मरेगा, ये भी वरदान है उसको बृहत नृसिंह पुराण से और पद्म पुराण से प्रमाणित है। वो 12 महीने में से भी किसी महीने में नहीं मरेगा, ये भी वरदान था। तो फिर कैसे आप कैसे उस दिन प्रकट हो कि इसको वध किए? फिर वैशाख का शुक्ला चतुर्दशी जो हम नृसिंह चतुर्दशी के रूप में पालन करते हैं, तो उस दिन फिर कैसे वध किए भगवान को? तो बोला गया तो 12 महीने में नहीं मरेगा। फिर इसलिए कोई कोई टीकाकार ऐसे कहते पत्र बोले वो मड़ मास में अधिक मास में भगवान ने मारे थे इसको, किसको? हिरण्यकश्यप को, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान ने उनको वध किए थे। लेकिन कोई में एक भक्त को पूछ रहा था, तो सांस्कृत पंडित है, तो वो कहा कि एक्चुअली वही वैशाख मास में वो मड़ मास जो था, अधिक मास जो था, वैशाख मास के साथ ही वो अधिक मास आया था। इसलिए एक प्रकार के वो वैशाख मास ही है, वैशाख मास के साथ ही जुड़ा हुआ था अधिक मास। इसलिए भगवान ने इस प्रकार बद्ध किए। लेकिन पद्म पुराण के प्रमाण के अनुसार, पद्म पुराण कहते कि हम किस लिए नृसिंह चतुर्दशी पालन करते हैं, तो वहां पर कहा जाता कि प्रकृति में एक हरित मुनि और पद्मावती, ये दोनों रहते थे सिंधु नदी के किनारे मुल्तान प्रदेश में। ये ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे और कई हजार साल तक तपस्या किए, केवल सूखे घास जैसे ही सुतपा और पुष्ण जैसे तपस्या किए थे, भी ऐसे ही कठोर तपस्या किए। भगवान प्रसन्न होकर जब उनके सामने प्रकट हुए, नृसिंहदेव को ही तपस्या करते थे, नृसिंहदेव के धाम जैसे हम वैकुंठ जगत में उनकी भी अलग लोक है नृसिंह लोक, तो ये लोग नृसिंहदेव को ही ध्यान करते थे। जब भगवान ने उनके सामने प्रकट हुए तपस्या में प्रसन्न होकर और इनको पूछे क्या वरदान चाहते हैं, जो भी चाहिए मांगो, तो इनके मन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा था नहीं, यहां तक कि मुक्ति की भी इच्छा नहीं था। इनके मन में यही इच्छा था कि भगवान को ही पुत्र के रूप में प्राप्त करने का। इसलिए जब उनकी इच्छा को उन्होंने व्यक्त की है तब भगवान नृसिंहदेव ने कहे कि देखो मैं हे माता, मैं आपकी गर्भ में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अभी तुम्हारा समक्ष में है, सख्यत आपके समक्ष में छोटे बालक हैं, बाल नृसिंह होकर मैं आपकी गोद में आ जाता हूं। आप मुझे जैसे दुलारा ने वात्सल्य में जैसे ही लालन पालन करना चाहते हो, आपकी इच्छा पूर्ण कर सकते हो। ऐसे कह के तुरंत ही नृसिंहदेव बाल नृसिंह मूर्ति में छोटे बन जाते हैं और माता पद्मावती ने अपने गोद में इनको ले लेती है। यहां पर पद्म पुराण वर्णन आती कि तो इसी दिन ये विशेष रूप में इस सत्य युग में घटना संपन्न हुआ था सृष्टि के प्रारंभ से, और ये इसलिए वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान ने उनकी पुत्र के रूप में उनकी गोद में गए थे। किनकी गोद में? पद्मावती की गोद में। इसलिए कहते कि ये दिन नृसिंहदेव के आविर्भाव के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकशिपु को वध करने के पहले भी भगवान बाल नृसिंह के रूप में माता पद्मावती की गोद में आए थे। तो इस प्रकार ये पद्म पुराण की जो इसकी क्लैरिफिकेशन दिया जाता कि उसी कारण से ये नृसिंह चतुर्दशी व्रत भगवान के आविर्भाव तिथि मनाया जाता। और वहां पर वर्णन है कि जो बाल नृसिंह को हरित मुनि और पद्मावती की गोद में बैठने वाले बाल नृसिंह को जो ध्यान करता है समस्त प्रकार से विघ्न से मुक्त होकर अंत में भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए कई प्रकार की स्टोरीज बता जाता है कि इसलिए हम नृसिंह चतुर्दशी व्रत पालन करते हैं। तो जो भी है, लेकिन विशेष रूप में हरिभक्ति विलास में भी सनातन गोस्वामी ने वर्णन करते कि प्रकृत में भगवान की जो आविर्भाव वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि में ही हुआ था। किनकी? भगवान नृसिंहदेव की। और खंभे से प्रकट होकर उन्होंने विदारण किए थे हिरण्यकशिपु को। इसलिए यह समाधान है कि यदि वो 12 महीने में से मरना नहीं था, लेकिन फिर भी वो मड़ मास जो अधिक मास था वो वैशाख मास से साथ जुड़कर था, एक साथ है। तो इस प्रसंग अस्ते आगे हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रसंग की प्रारंभ होती है जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी इस श्लोक के पहला श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते कि ये टीका प्राय सभी लोग इसी सभी आचार्य लोग ने वीर राघव आचार्य की टीका के आधार पर ये श्लोक प्रभुपाद ने कोट करते हैं कि समोहं सर्वभूतेषु ने आगे हतपुत्रादिति चक्र ग्राहेण विष्णुना। भगवान ने जो पिछले श्लोकों में पिछले अध्याय में पिछले स्कंद में इसको वर्णन किया कि भगवान ने दीति पुत्रों को बद्ध किया अपने चक्र के माध्यम से, और अदिति के पुत्र इंद्र को इंद्र की सहायता की। इसलिए भगवान जो सब समय समदर्शी माने जाते हैं, समहं सर्वभूत सभी के प्रति समदर्शी होने वाले, तो फिर वो इस प्रकार कैसे किए? क्यों वो पक्षपात किए? राक्षसों को वध किए और इंद्र की देवताओं को रक्षा करते, ये सब समय क्यों ऐसा होता है? इंद्रारी व्याकुलंग लोके मृढ़यंती जुगे 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 भगवान ऐसे अवतार रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो भगवान तो ये समदर्शी होना चाहिए, सबके प्रति समान दृष्टि रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं? ये प्रश्न था किसकी? महाराज परीक्षित के प्रश्न था। इस अध्याय में दो प्रश्न मुख्य रूप में परीक्षित महाराज पूछे हैं। एक तो कि ये भगवान क्यों पक्षपात करते हैं, और दूसरा उन्होंने कहते कि दूसरा प्रश्न शिशुपाल के विषय में है, जो कि यद्यपि वह कृष्ण के बचपन से ही उनके प्रति शत्रुभाव रखता था तथा कृष्ण की निंदा किया करता था, फिर भी जब कृष्ण ने उसका वध किया तो वह कृष्ण में लीन हो गया, ये कैसा हुआ? मुख्य दो प्रश्न इस चैप्टर में है। प्रथम ये पहला चैप्टर सप्तम स्कंद में महाराज परीक्षित ने पूछे किनको, सुखदेव गोस्वामी को। तो इसी के उत्तर देते हुए परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी ने समझाया। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों के चरण पर अपराध करने के कारण वैकुंठ में भगवान के दो द्वारपाल जिनके नाम जय तथा विजय थे, सत्य युग में हिरण्यकशिप तथा हिरण्याक्ष बने, फिर अगले युग में त्रेता में वे रावण तथा कुंभकर्ण बने और द्वापर युग में अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। अपने सकाम कर्म से जय तथा विजय ने भगवान के शत्रु बने रहना स्वीकार किया और जब उसी मनोवृत्ति में उनका वध हुआ तो उन्हें साजुज्य मुख्य प्राप्त हुआ। इस तरह यदि कोई ईर्षावश भी भगवान का चिंतन करता है तो उसे मुख्य प्राप्त होता है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो भगवान पक्षपात किसी के नहीं करते हैं, लेकिन उसी श्लोक में भगवान ने कहते गीता के कि जे भजंती तुमांग भक्तिया, जो भक्त मेरी विशेष रूप में भजन करते हैं तो वो मेरे हैं और मैं उनकी हूं। तो इसलिए इसको बहुत सुंदर भाव से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझाते हैं। भगवान कभी किसी की पक्षपात कर ही नहीं सकते, बाकी किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि केहू माने केहू ना माने सभी तार दास, जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश। कोई माने या कोई न माने, लेकिन सभी उनके दास है। किनके दास है? कृष्ण के, सभी भगवान के दास है। कोई स्वीकार करता है कोई स्वीकार न करता है, लेकिन सभी भगवान के ही दास है। क्योंकि अहंग विजय प्रद पिता है, प्रत्येक जोनि में 84 लाख जोनि में एकमात्र विजय प्रद पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही। तो सभी के पिता होने के नाते हैं और किसी की अमंगल नहीं कर सकते, अपने पुत्रों की अमंगल नहीं करते हैं। इसलिए सभी जीव मात्र ही भगवान के ही नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण की नित्य दास सबके स्वरूप है। लेकिन इस बात को तो जो संतजन स्वीकार कर लेते हैं, जो स्वीकार करते हैं इस बात को और उनकी भक्ति करते देवता है, जो इस बात को स्वीकार न करके उनके द्रोही बनते हैं तो उनको राक्षस कहते हैं। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि केहू माने केहू ना माने, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन वस्तुतः सभी भगवान का ही नित्य दास है, सेवक है। जो इस बात को मानता है उसके कल्याण होता है और जो नहीं मानता है अपना गुणे से ही जाए नाश, अपने कर्म के कारण अपने गुणों के कारण तो उसकी विनाश होता है। लेकिन फिर भी यदि कोई भगवान के हाथ से कोई किसी की वध की जाती है तो वो तो ऐसा ही है कि भगवान कैसे कभी कोई दुष्ट बालक को एक थप्पड़, जैसे पिताजी कोई अपने दुष्ट बालक को सुधारने के लिए एक थप्पड़ लगाता है तो उसमें पिताजी पक्षपात नहीं करता। कोई पिताजी के दो पुत्र, कोई अच्छे लड़का है बहुत, पिताजी की आज्ञाकारी है, सब कुछ बात सुनता है, दूसरा पुत्र इसकी बात नहीं सुनता पिताजी की, अपने मर्जी से कुछ भी करता है, कुमार्ग में जाता है तो पिताजी उसको सुधारने के लिए कभी थप्पड़ लगा देता है, तो इसको इसके पक्षपात नहीं कहा जाता है। रूपा जी ने अगले श्लोक में तात्पर्य लिखे, उदाहरण दिए हैं। तो इसको कैसे पक्षपात कह सकते? पिताजी ने केवल इसको सुधारने के लिए, उसके हित के लिए ही थप्पड़ लगाया था और उसकी अहित चिंतन नहीं किया है? तो उसी प्रकार भगवान ने जब भी किसी साधु संत को आश्वासन देने के लिए, बात सुरक्षा के लिए कभी किसी राक्षस को वध करते हैं, दिखाई पड़ता है, लेकिन भगवान ने तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित न होने के कारण, तीनों गुणों की परे होने के कारण, त्रिगुणातीत होने के कारण, ये गुणों की प्रभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होने के कारण भगवान की जो कुछ करते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं वो सभी प्राणी के हित के लिए ही होता है, तो उससे भी उसके मंगल होता है। भगवान के स्वरूप ऐसा ही है, कभी किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते भगवान। भगवान किसी की अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे ही सूर्य, उदाहरण दी जाती है कि सूर्य जिस प्रकार अंधकार को दर्शन करना चाहेगा वो कभी अंधकार को दर्शन नहीं कर सकता। जहां सूर्य जहां कृष्ण तहां ना ही मायार अधिकार, उसी प्रकार जहां पर सूर्य है तो वहां पर छाया के अंधकार का स्थिति नहीं है, सामने सूर्य के सामने कभी अंधकार नहीं हो सकता। सूर्य जब भी अंधकार को देखने जाता है तो प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार भगवान यदि कोई किसी राक्षस को वध करते हैं, ऐसे ही लौकिक दृष्टि से हम देखते कि उसको अहित हो रहा है, लेकिन इसको अहित नहीं होता है। वो राक्षस को जो मुख्य प्राप्त होता है साहब, वो मुख्य प्राप्त होता जो कि हजार हजार साल तपस्या करके जो मुनि ऋषि लोग जिस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उस मुक्ति को तो केवल भगवान की शत्रुता के रूप में राक्षस लोक ने भगवान की हाथ से ही बा उनके चक्र के माध्यम से बद्ध हो जाने से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यहां पर भी जब राजसूय यज्ञ हो रहा था महाराज युधिष्ठिर के, और राजसूय यज्ञ में सबसे पहला अग्रगण्य सबसे पहला किसी की पूजा किया जाएगा, तो उसके बारे में चर्चा हो रहा था, और भीष्मदेव ने कहे कि सबसे पहले किसको पूजा होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का ही पूजा होना चाहिए। भगवान वासुदेव ही सभी कारण के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसलिए उन्हीं के ही सबसे पहले पूजा होने के लिए जो भीष्मदेव ने प्रपोजल दिया, सभी लोग एक साथ इसके समर्थन किए, लेकिन एक व्यक्ति को इसे सहन नहीं हुआ हो रहा था। किसको? शिशुपाल को। शिशुपाल के साथ आप संबंध जानते भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि शिशुपाल का पहले निर्धारित हो गया था रुक्मिणी के साथ विवाह के लिए, रुक्मिणी की अनिच्छा सत्वे भी रुक्मिणी की इच्छा नहीं था कि शादी करने का शिशुपाल को, लेकिन रुक्मी जो रुक्मिणी की भाई है वो ऐसा ही अपने हिम्मत पर अपने बल के पर सारे परिवार लोगों को इनकी महाराज भीष्मक जो उनके पिताजी रुक्मिणी की वो भी नहीं चाहते थे कि ये, लेकिन रुक्मी सबके पर प्रभाव डालकर अपने शक्ति सामर्थ्य के आधार पर सोचता था कि इन बलात्कार से शादी करा देगा, लेकिन बीच में आप जानते हैं रुक्मिणी जी ने किस प्रकार ब्राह्मण के माध्यम से पत्र भेजा कि इनके पास श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण रुक्मिणी की इच्छा को स्वीकार करते हुए अकेले ही पधारे थे और रुक्मिणी को हरण करके ले गए थे स्वयंवर सभा से। तो दृश्य अभी तक उसको दिखाई पड़ता था, किसको? शिशुपाल को। शिशुपाल बड़ा दुखी हो गया था, कोई इसको रक्षा नहीं कर पाया। रुक्मी गया था बड़ा प्रतिज्ञा करके, यदि मैं मेरा बहन को वापस नहीं ला पाऊंगा तो मैं गांव में दोबारा राजप्रसाद में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन वो भी बड़ा अपमान हुआ। भगवान ने इसके पर बाल फाल सब सेविंग करके आधा आधा रथ के पीछे बांध दिए, घिसट के जा रहा था, तो लेकिन बलराम ने आकर उसको छुड़ाए थे। तो इसलिए वो सब दृश्य उसको दिखाई पड़ता था, तो कहा कि वही ये फिर वही कैसे माने बैठेगा क्या, वो कैसे सबसे पहले पूजा कैसे हो इसकी होगा। गाय चर मैंने बहुत कुछ इनडायरेक्टली प्रकृति में भगवान की गुणगान करता था। कौन? सरस्वती देवी ने शिशुपाल के जिह्वा में बैठकर गुणगान कराते थे इसको, कहता था कि ग्वाला है, गाय चराने वाला है, गोपियों की वस्त्र हरण करने वाला के बहुत कुछ है, दूसरे स्त्रियों के साथ में नाचने वाला है, बहुत कुछ कह रहा था। लेकिन ऐसे कहते कहते बहुत निंदा जो भी हो गया, क्योंकि इनके मासी का लड़के भी थे, भगवान का ही मासी का लड़का था। कौन? शिशुपाल और दंत बकर दमघोष के पुत्र थे, बेटे थे दोनों। और कभी कभी भगवान ने जाते थे उनकी मासी की बाड़ी में, तो उनके घर में जाते थे, तो ये बिना कारण से भगवान को पत्थर उठाकर मारने के लिए आते थे, गाली देते थे। जब से उनकी बोली प्रारंभ हुई, अगले श्लोक में बताया जब बोली प्रारंभ हुई है, परीक्षित महाराज कहते थे इनकी बोली प्रारंभ होते ही उन्होंने गाली देना शुरू किया। सबसे पहले किसी को गाली दिया? कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा कृष्ण की निंदा करने वाला था, जो शिशुपाल राष्ट्रीय यज्ञ में जब तो महाराज युधिष्ठिर साक्षात देखे हैं कि ऐसा शिशुपाल का जब निंदा करते रहा, निंदे करते रहे, अंत में भगवान ने इनको अपने मासी को वचन दिए थे कि 100 निंदा में सहन करूंगा तुम्हारे पुत्र का, 100 से जो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर मेरे सुदर्शन इसको क्षमा नहीं करेगा। तो इसलिए शिशुपाल जो निंदा करना प्रारंभ किया था राजसूय यज्ञ में भगवान के, तो भीम ने गदा और लेकर बार बार उठता था संहार करने के लिए इसको, लेकिन भगवान ने उनको शांत करी बैठे, बैठो बैठो शांत बैठो है, समय आने पर उसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ क्षेत्र में पूरा युद्ध होगा तो फिर यहां पर रण क्षेत्र बन जाएगा, यज्ञ क्षेत्र में फिर रक्तों की स्रोत बहेगा, तो इसलिए भगवान ने उनको रुक कर रखे। निंदा सहत रहे जो 100 क्रॉस कर गया, तुरंत सुदर्शन गया और उसके गले गर्दन को काट के पूरा यज्ञ क्षेत्र से बाहर लेकर फेंक दिया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर देख रहे थे कि उसकी जो जीवात्मा आकाश में जाकर ऐसे ही एक ज्योति स्वरूप ऐसे प्रतीक्षा कर रहा था किसी को, बाद में से कुछ समय प्रतीक्षा करके आके भगवान के चरण में ही समा गया। बड़ा आश्चर्य हुआ किनको, महाराज युधिष्ठिर को, ये कैसे संभव हुआ, इतनी बड़े राक्षस है जो भगवान का ही इस प्रकार निंदा करके इतनी निंदा किया, और बचपन से ही भगवान की निंदक था, जन्म से ही छोटा बोलना प्रारंभ किया तब से ही भगवान की जो निंदा करता था द्वेषी था, तो उस व्यक्ति किस प्रकार भगवान के चरणारविंद में समा गया है? बड़ा उनको मैंने इसकी रहस्य को जानने के लिए उन्होंने नारद जी को प्रश्न पूछा था, कौन प्रश्न पूछा, महाराज युधिष्ठिर नारद जी को प्रश्न पूछे, और नारद जी उसी प्रश्न के उत्तर देते हुए ये सारे इतिहास प्रारंभ किया है, इनकी पूर्व इतिहास को प्रारंभ किया कि ये था कौन, शिशुपाल था कौन, शिशुपाल दंतवक्र जैसे हैं, ये किस प्रकार भगवान विष्णु की दर्जे पर द्वारपाल के रूप में थे, जय तथा विजय के रूप में दोनों द्वारपाल थे, और चारों कुमार ने ब्रह्मा जी की मानस पुत्र, सबसे पहला पुत्र ब्रह्मा जी की चारों कुमार भ्रमण करते करते किस प्रकार वैकुंठ के दर्जे पर आए, और 5 साल की यदि सबसे पहला ब्रह्मा जी की बात उनकी ही नंबर सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति में, लेकिन उन्होंने 5 साल के बालक के रूप में थे और नंगे थे, वस्त्र आदि कुछ स्वीकार ग्रहण नहीं किए थे, अब बच्चों की तो कहीं भी जाते हैं प्रवेश करने के उनको अधिकार रहता है, तो वैकुंठ के दर्जे पर आकर वो अंदर में प्रवेश करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे तब ये इन्होंने रोक दिया था इनको, दोनों गदा दोनों साइड में खड़े थे, दोनों गदा को बोले कि रुको जाओ रुको कहां जा रहे हो, तो उस घटना को फिर वर्णन किए कि सुखदेव गोस्वामी के किसी लिए ये घटना हुआ, इनके पूर्व जन्म के सारे इतिहास को वर्णन किए कि ये दोनों जो शिशुपाल और दंतवक्र ये इस भौतिक जगत के भौतिक जगत में गुणों के द्वारा प्रभावित होने वाले बद्ध जीव नहीं थे, इसी को समझाने के लिए इन्होंने उनके पहला जीवन पहले हिस्ट्री को बताया, जो वैकुंठ के निवासी होते हैं चाहे कभी कभी किसी कारण से यदि वे भौतिक जगत में आने पर भी नीचे गिर जाने नीचे आने पर भी फिर भी वो तीनों गुण की परे रहते हैं, इनको भगवान की बहिरंग शक्ति कभी स्पर्श नहीं करती है, वो हमेशा अंतरंग शक्ति के द्वारा ही बाधीनस्थ होकर लीलाओं को प्रकट करते हैं, इसलिए जीव गोस्वामी भी कहते कि प्रकृत में ये भागवत में जितनी भी पर्सनालिटियों की सब चरित्र वर्णन की गई है, अपने भागवत संदर्भ में कहते कि जितनी व्यक्ति की चर्चा नाम उस भागवत में दी गई है ये कोई भी बद्ध जीव नहीं है, यदि बद्ध जीव ये सब होते हैं बद्ध जीवों के चरित्र को सुनकर कोई दूसरा बद्ध जीव मुक्त नहीं होता, ये सब मुक्त आत्मा है, चाहे वहां पर अजामबेल के नाम भी आता है, अजामबेल के चरित्र है, भाई हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भाई जितने राक्षसों के चरित्र वृत्रासुर के चरित्र ये सब वर्णन आता है, लेकिन ये कोई भी भागवत में जो राक्षसों की वर्णन आता है ये केवल ड्रामा की राक्षस है, ये ओरिजिनल राक्षस नहीं है, ये ओरिजिनल राक्षस होते हैं और अब हमारे जैसे बद्ध जीव होते हैं फिर उन्हीं की चर्चाओं करके हम पर मुक्तात्मा नहीं होते हैं, ये सभी मुक्तात्मा ही है, यह एक दृष्टांत दी गई इस प्रकार, ये कौन जय विजय की ये जब बात में आके हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बने, ये वैकुंठ की दर्जे पर भगवान का ही द्वारपाल थे, वैकुंठ के दर्जे पर द्वारपाल थे, मुक्तात्मा थे, लेकिन चारों कुमार भ्रमण करते करते वहां पहुंचे, सुखदेव गोस्वामी फिर ने परीक्षित महाराज के प्रश्न आता है ये कैसा है, माने जो भगवान के द्वारपाल को कौन अभिशाप दे सकता है, ऐसा फिर कौन सा व्यक्ति है कि इनको भी अभिशाप देने में समर्थ है, और जो वैकुंठ के दर्जे पर थे वो फिर कैसे इस भौतिक जगत में कैसे गिर सकते हैं, ये सब प्रश्न इसी अध्याय में आगे तो उसकी उत्तर अगला अध्याय से प्रारंभ होगी भागवत में, ये प्रसंग प्रकृत में इस प्रकार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष आए तो उन्होंने पूछे कि ये कैसे संभव है, ये कौन सा व्यक्ति ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि इनको अभिशाप देने में समर्थ हो गए भगवान के द्वारपालों को है? और ये नित्य मुक्त होते हुए वो कहां से कैसे पतन हो गए भगवान के, क्योंकि वैकुंठ जगत से कहा जाता कि एक सूखा पत्ता भी नीचे नहीं गिरता है, कहते कि कुछ भी नहीं गिर सकता। लेकिन फिर ये कैसे गिर गए भगवत धाम से, बड़ा रहस्य की बात है। ऐसे ही तो कुछ गिरता नहीं, लेकिन जो भगवान ने स्वयं चाहते हैं किसको, फिर वो गिर सकता है। क्योंकि हमारे पास में जैसे कभी कभी युद्ध करने के लिए, कुश्ती कसरत करने के लिए परस्पर में मैंने कभी कभी ऐसे इच्छा होती है, ये इच्छा ओरिजिनली किसके पास है, जो भगवान के पास में जो इच्छा है वही इच्छा है, केवल हमारे पास में दिखाई पड़ती है, हमारे पास में वही गुण दिखाई पड़ती है। तो इसलिए कभी कभी भगवान को भी ऐसी इच्छा होता किसके साथ कुश्ती कसरत करना है, तो ये वहां पर वैकुंठ में संभव नहीं होता, वहां कौन भगवान के साथ कुश्ती कसरत करेगा। इसलिए उन्होंने अपने के सेवकों को नित्य यहां पर फिर भेजते हैं, ये मर्त्यधाम में भेजते हैं, और स्वयं भी आते हैं, इस मर्त्यधाम में आते हैं विशेष रूप में जीवों को भी अनुकंपा करने के लिए, कि इनको आमंत्रण करने के लिए आओ, यहां पर जन्म तो संसार में पड़े हुए हो, मेरे नित्य धाम में आओ, यदि मेरी भक्ति करोगे तुम्हारा कैसे लाभ होगा, एक ड्रामा सृष्टि करते हैं, यहां पर ड्रामा करते आकर। इस मर्त्य मर्त्य लोग जो है इनकी रंगमंच है, यहां पर वो भगवान स्वयं हीरो बनते हैं, तो फिर किसको विलियन बनाते हैं जिसके साथ उनको फाइटिंग करना है, कौन भी विलियन इसलिए इनको बनाए, किसको, हिरण्याक्ष को और हिरण्यकशिप को, बराहा रूप में आए हिरण्याक्ष के साथ युद्ध के, फिर अभिनव सिंह के रूप में आकर हिरण्यकशिप के साथ में है। साधा कोई ऐसे विलियन रोल लेना चाहता, कोई कोई नहीं बनना चाहता, सभी हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन ये बड़े सेवक है भगवान के, सही राजी हो गए। पद्म पुराण वर्णन आता है प्रकृति में जब चारों कुमार ने इनको अभिशाप दिए कि नीचे पतन माने वो वैकुंठ के दर्जे से फिर नीचे मर्त्य लोक में पतन हो जाने के लिए, राक्षस ध्वनि में जाने के लिए, तो भगवान ने स्वयं आकर पधार गए दर्जे पर। भगवान अपने सेवकों के प्रति इतनी प्रेमी देख, इतनी प्रेम देखकर वो चारों कुमार तक कहते थे कि हम अभिशाप वापस कर लेते हैं, लेकिन भगवान ने कहे कि नहीं, ये मेरा ही इच्छा था, मेरे इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता, मैंने चाहता हूं इन्होंने इन्होंने मर्त्य धाम में जाए। लेकिन भगवान ने उस समय कहे कि देखो आप सोचो कि मेरे शत्रु बन के रहना चाहते हो कि मित्र बन के रहना चाहते हो, यदि आप मेरे मित्र बन के ही सात बार मुनियों की ब्राह्मण की साप को मैं वापस ले, मैंने इसको रद्द नहीं करना चाहता हूं, उनकी इच्छा भी पूर्ण हो, ब्राह्मण की वचन पूरा हो, लेकिन मैं एक आपको सलाह देता हूं कि यदि आप ऐसे मेरी मित्र बन के सात बार जन्म लेना चाहते, मर्त्य लोक में जाना चाहते, सात बार आपको ऐसे जन्म लेना पड़ेगा, मित्र बन के यदि रहना चाहते, भक्त के रूप में रहना चाहते हो, सात बार जन्म लेकर फिर सात बार ऐसे जन्म चक्र में जाने के बाद फिर वापस आओगे, और यदि तुम मेरे शत्रु बन जाओगे, शत्रु के रूप में मुझे मैंने मेरी भक्ति करोगे, सॉरी शत्रु के रूप में मेरे साथ में द्वेष करके मेरे साथ मेरे मुझे वीर रस के आस्वादन कराओगे, तो फिर तुम तीन जन्म के पास में वापस आ जाओगे। तो ये दोनों सोचे कि इतने दिन हम सात जन्म तक हमें भगवान के विच्छेद को सहन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने स्वयं चुन लिया कि हम तीन जन्म के बाद वापस आएंगे, चाहे आपके शत्रु हमको बनना पड़े। और हम जानते हैं कि प्रभु जय विजय ने कहे कि प्रभु हमको पता है कि आप वीर रस को आस्वादन करने चाहते हो, इसलिए आपको भौतिक जगत में कोई आपके समकक्ष व्यक्ति नहीं, कोई बद्धजीव आपके साथ में भूमिका निभाने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए आपने ही स्वयं ऐसा ही इच्छा करके हमको भेजते हैं भौतिक जगत में, हम आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे ही इच्छा को व्यक्त करके तुरंत जब कहे इन्होंने स्वीकार किए, तुरंत पतित हो रहे थे, पतित होने लगे, बड़े दया आ गया किनको, चारु कुमार को, हमें क्या किए, भगवान को कह रहे थे कि हम अभिशाप वापस ले, भगवान कहे कि नहीं इनको जाने दो, लेकिन उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप लोग तीन जन्म के बाद फिर वापस आ जाओगे, कहां अपने पोस्ट पर अपने पद पर, ये जय विजय जो द्वारपाल के रूप में जो भूमिका निभा रहे थे वैकुंठ के दर्जे पर, उस पद फिर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी ये जो पतन होना केवल टेम्पररी है, वो भगवान की इच्छा को केवल पूर्ति करने के लिए, इसलिए जो वैकुंठ के जो निवासी होते हैं वो कभी हमारे तरफ गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए नित्य मुक्त जीव। तो इस कथा को इस अध्याय के अंत में संक्षिप्त में के लिए आभास के रूप में वर्णन करते कौन, सुखदेव गोस्वामी। कहते कि किसी भी रूप में यदि कोई भगवान के साथ अपने संपर्क को जोड़ लेता है फिर उसकी कल्याण ही होता है। कामाद गोप्या भयाद कमस द्वेषात चैवादय नृप संबंधात विस्नय सॉरी हाँ स्नेहात जुयम भक्त वयं विभु। उन्होंने कहते कि संपर्क कैसे भी जोड़ो भगवान के साथ में, काम के कारण लस्टी डिजायर के कारण गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखे कि ये नंद की लाला है और इतनी सुंदर है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, लेकिन इनकी सारी एकमात्र लक्ष्य केवल कृष्ण ही बने, कृष्ण की एला दूसरी किसी चिंतन नहीं करते थे। और कात्यायन को इन्होंने वर मांगा, कात्यायन देवी को वर मांगा नंद गोपो सुतंग देवी पतिंग में कुरुते मम ए नंद गोपो सुत को हमारा पति बना दो। इस प्रकार उन्हें काम भाव से भी बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है कि अपने इंद्रिय तृप्ति की भावना लेकर काम वासना की भावना लेकर भगवान के साथ में स्वयं को संपर्क को जोड़े तो इनकी भी कल्याण हुई। कामाद गोप्या भयाद कमस, कमस हमेशा भयभीत होकर भगवान की चिंतन करता था दिन रात 24 घंटे। नारद जी ने कहा इसलिए अपने मतामत दे रहे कि बौद्ध जीवों के लिए भगवान की अनुकूल भाव से इसको चिंतन करना बड़ा कठिन है, प्रतिकूल भाव से बहुत आसान से चिंता कर सकता कोई शत्रु बन के। नारद जी ने कहा कि मैं तो हैरान हो गया जब देखा कंस की भक्ति को, मैं स्वयं हैरान हो गया, क्या कंस है, कंस की चिंतन 24 घंटे कृष्ण की चिंतन, कृष्ण भावना में भक्त की भी ऐसी चिंतन नहीं हो सकता है। सुबह उठ के ही सोते सोता है भी रात भर स्वप्न देखता, किसको सो नहीं पाता, तुरंत उठ जाता जग जाता है आ गया कृष्ण। और यदि पानी भी तो उसके पत्नी भी पत्नी नारायण के पत्नी भी सामने आ जाती थी तो पत्नी को देखकर ही सोचते कंस कृष्ण आ गया, तरवल निकाल लेता था। 24 घंटे स्थावर जंगम सब प्रत्येक वस्तु में कृष्ण दर्शन होते थे, किसको जैसे उत्तम वैष्णव के लिए कहा गया स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्टदेव स्फूर्ति, तो कंस के सर्वत्र इष्टदेव स्फूर्ति हो रहे थे, सर्वत्र दिख रहा था। पानी पीने के लिए देखता पानी के अंदर उसको कृष्ण दिखाई पड़ते थे, खाना खाने जाता था खाना में कृष्ण दिखाई पड़ते थे। द्वेष के कारण भगवान के प्रति इसे द्वेष भाव रखने के कारण इसको पता था कि मैं भगवान इसके हाथ में मरूंगा, वो भविष्यवाणी इसको याद हो रहा था, स्वर्गवाणी स्वर्ग से देवता लोग ने आभास दिया था कि अष्टम गर्भ देवकी के अष्टम गर्भ तुझे मारेगा, इसलिए भय भयात कम से भय से सब समय चिंतन करता था। भयात कम से द्वेषात चैवादय नृप ये चैव चदिवंशी दमोघोष की पुत्र कौन शिशुपाल दंतवक्र, ये द्वेष के कारण भगवान के प्रति हमेशा इनकी चिंतन करते थे, द्वेष के कारण इनके कैसे इनके नुकसान पहुंचाए, इन कैसे मारेंगे कृष्ण को मार डालेंगे, ऐसे भावना लेकर हमेशा उनकी चिंतन करते थे। द्वेषात चैवादय नृप संबंधात वृष्ण वृष्णवंशी भगवान के साथ में अपने संबंध को समझते हुए कि ये हमारा वंश के वंश में जन्म लिया है, जदुवंशी है, जदुवंश में जन्म लिया है, जादव है, ऐसे ही सोचते हुए अपने संबंधी सोचते हुए भगवान के साथ भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करते थे। और कहे कि यह है युधिष्ठिर महाराज आप और पांडव आपके जो भाई हैं आप कृष्ण को समझते संबंधी ने कैसे स्नेहा स्नेह के कारण है आपके मामा के लड़का है, ऐसे अत्यधिक स्नेह के कारण आप उनको सब समय चिंतन करते हो। और भक्तिया वयं विभु हम जैसे भक्त, नारद मुनि कहते मैं हम जैसे भक्त हैं, हम शुद्ध भक्ति योग के माध्यम से इनके स्मरण रखने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए किसी ना किसी रूप से कोई यदि संपर्क को जोड़ देता है कृष्ण के साथ उसकी कोई हानि नहीं पहुंचने वाला, चाहे शत्रुभाव से हो या मित्रभाव से हो। यदि जैन केन प्रकारेण कृष्णे मन निवेशय, किसी ना किसी उपाय से कृष्ण के चरण अरविंद में मन को निवेश कर देना, ये नारद मुनि की रिकमेंडेशन है। लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, भक्ति का प्रकृत रूप क्या है, उत्तम भक्ति का अर्थ ही अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति का अर्थात अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण नेवर फॉरगेट हिम, स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। लेकिन रूप गोस्वामी कहते कि अनुकूल्येन अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य किसी भी रस में अनुकूल भाव से भगवान के साथ संपर्क को जोड़ना, प्रतिकूल भाव से नहीं। लेकिन यदि किसी कारण से किसी राक्षस भी यदि ऐसे प्रतिकूल भाव से भी, जैसे दमोघोष के पुत्र शिशुपाल दंतवक्र अपने संबंध को जोड़े, तो उसी से भी उनकी कल्याण हुआ। उन्होंने फिर भगवान को प्राप्त किए। इसलिए इसको समझाते हुए इस अध्याय में अंत में इस इतिहास को बताते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कि किस ये जो कौन थे शिशुपाल और दंतवक्र, ये थे कौन, इनके पूर्व जन्म का इतिहास को बताते हैं, बता रहे हैं कि ये सबसे पहले जब चारों कुमार के अभिशाप से भौतिक जगत में गिरे, सबसे पहले इन्होंने ये दोनों राक्षस के अवतार राक्षस के रूप में जन्म लिए। कश्यप और दिति की पुत्र के रूप में, दिति की गर्भ से ये दोनों जन्म लिए। इनके नाम था हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों के बड़े कौन था, छोटा कौन था, हैं? हिरण्यक्ष बड़ा कि, लेकिन प्रकृति में भूमि मातृ गर्भ से जन्म लिया था सबसे पहले हिरण्यक्ष। हिरण्यक्ष जन्म लिया था, बाद में हिरण्यकशिपु जन्म लिया था। लेकिन जब ये पिताजी की वीर्य बारेणु जो प्रवेश करता है माता के गर्भ में, जो पहला वीर्य निक्षिप होता है उससे जो संतान होता है वो जन्म के समय बात में आता है। इसलिए जो जामज पुत्र होते हैं, इसलिए सबसे पहला प्रकृति में हिरण्यकशिपु का शरीर का निर्माण हुआ था मां के गर्भ में, इसलिए इसको बड़ा कहा जाता है। लेकिन जन्म जब हुआ था सबसे पहले तो हिरण्यक्ष जन्म हुआ था, बाद में हिरण्यकशिपु आया था, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु को बड़ा माना जाता। और इतिहास को विशेष रूप में अगले अध्याय में फिर बताएंगे हिरण्यकशिपु के बारे में डिटेल। इसलिए बैकग्राउंड केवल बताया गया कि ये जो कथा प्रारंभ होने जा रहा है नृसिंह कथा, भगवान की प्रहलाद महाराज नृसिंह के प्रसंग, तो इतिहास संक्षिप्त में बताए। और इसी के बारे में अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी तरह शत्रुता या भक्ति भय स्नेह या विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान के पर केंद्रित करता है तो परिणाम एक सा मिलता है, क्योंकि अपने आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये तात्पर्य प्रभुपाद ने वही समझाते कि हमको फिर भी प्रतिकूल भाव से भगवान का चिंतन करना शेष कर नहीं है, अनुकूल भाव से भगवान की चिंतन करें। इसी प्रकार प्रारंभ अंत में इसे अध्याय की कहते कि हिरण्यकशिपु, इस प्रकार हरि ने नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में गिरी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्यक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, और बाद में भगवान ने बराह के रूप में हिरण्यक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर शांत तथा समदर्शी है, क्योंकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित था। अतः हिरण्यकशिपु नाना प्रकार के यत्न करने पर भी उसे मारने में असमर्थ रहा। तत्पश्चात भगवान विष्णु के दोनों द्वारपाल जय तथा विजय, रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विश्रवा द्वारा केशिनी के गर्भ से उत्पन्न किए हुए वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों के अत्यधिक कष्टप्रद थे। नारद मुनि ने आगे कहा है, राजा जय तथा विजय को ब्राह्मण के साप के मुक्त करने के लिए भगवान रामचंद्र रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए प्रकट हुए। अच्छा होगा कि तुम भगवान रामचंद्र जी के कार्यकलाप के विषय में मार्कंडेय से सुनो। सुखदेव गोस्वामी राम आगे कहते कि नवम स्कंद प्रकृत में तो आप तो बार बार इसके बारे में सुन चुके हैं रामचंद्र की कथा, इसलिए मैं इसको विस्तार से नहीं बता रहा हूं, मैं केवल कृष्ण के बारे में आपको बताऊंगा। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे, इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिप तथा उनके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच में ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बताएं। और उसकी चर्चा अगले अध्याय से ही प्रारंभ होगी। कोई किसके प्रश्न है? 5 मिनट का है। हाँ, जैसा ही हमारा सब जो प्रभु जी बोलते हैं कि द्वेष से, द्वेष को कैसे, द्वेष से द्वेषी व्यक्ति कैसे भक्ति कर सकता है, लेकिन द्वेषी का द्वेष के कारण ये इनके शत्रु बने। और शत्रु बने भगवान के साथ में जो शत्रु का शत्रुता रूप में भी शत्रुता करता है तो उसका भी कल्याण होता, क्योंकि उसका साजुज्य मुक्ति प्राप्त होता भगवान के हाथ से बद्ध होने के कारण। लेकिन ऐसा ही कहते काम जो हमारा जो शत्रु मुख्य काम क्रोध लोभो मोह मद आश्चर्य, ये 6 शत्रु हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते कि इनको सभी को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, एक को नहीं लगा सकते, वो है ईर्षा मात्सर्य, इस सेवा नहीं लग सकता। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा आदि, ऐसे ही इनको लगा सकते, लेकिन जो ईर्षा है, लेकिन फिर भी भगवान ने नवम स्कंद जब राम कथा को पढ़ोगे 2 चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी रामचंद्र की लीला कहते, लेकिन वह वरदान देते इस राम कथा को सुनने और पढ़ने वाला का क्या लाभ होता है। वरदान देते हुए कहते कि जो नित्य सायंग और संध्या में इस राम कथा को श्रवण और कीर्तन करेगा इसकी ईर्षा रूपी बीमारी चली जाएगी। इसलिए अर्थात भगवान की कथाओं को नियमित श्रवण करने से ईर्षा भी नष्ट हो जाए, ईर्षा भावना दूर हो जाता है, फिर मैत्री भावना उत्पन्न होती है। इसलिए जिसकी ज्यादा ईर्षालु भावना का ईर्षा की भावना रहता तो उनको नियमित कृष्ण कथा को श्रवण करना, नियमित श्रवण करने से ईर्षा भावना चली जाती है। लेकिन ईर्षा भक्त ईर्षा को ये हम अनुकूल भाव से भक्ति नहीं कहते हैं, लेकिन प्रतिकूल भाव से ईर्षा को भी, जैसे हिरण्यकशिपु, तो हम ऐसे नहीं बन सकते, ईर्षा को ऐसे उपयोग नहीं कर सकते। द्वेष और ईर्षा अलग अलग, मेरे को तो अलग नहीं लग रहा है। ईर्षा ईर्षा तो किसके प्रति द्वेष भावना रखना उसी को ईर्षा कहते हैं। भक्तों के मन में क्यों ईर्षा आती है? भक्तों के मन में ईर्षा क्यों आती है? ये प्रत्येक भक्त का अपना प्रारब्ध के कारण कई जन्म से लगा हुआ है। ये क्यों आती है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि अनादि कर्म फले, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जड़े तारी बारे ना देखी उपाय। अनादि कर्म फले, इसकी किस लिए मैं गाढ़ा में गिरा हूं, किस लिए हम जन्म संसार में गिर गए, ऐसा प्रश्न करना प्रभुपाद ने कहते मूर्खता है। कोई 20 फुट गाढ़ा के अंदर गर्त के अंदर गिर गया है नीचे है, तो उसके सबसे पहला कर्तव्य क्या है? वहां से कैसा ऊपर आना, ना वहां बढ़ के रिसर्च करना मैं क्यों गिर गया कैसे गिर गया, और इसे मिट्टी पड़ के इसको समाधि बना देगा उधर। इसलिए हम ईर्षा, हमें ईर्षा तो किसी ने क्या शरण, किसी न किसी का यदि हमारे मन में ईर्षा की भावना उत्पन्न हो गया तो इस भावना को कैसे, भावना से कैसे मुक्त होना उसकी उपाय देखना चाहिए। उसकी उपाय है कि नियमित कृष्ण कथा सुनना। सुखदेव गोस्वामी कहते कि नियमित राम कथा को श्रवण करोगे तभी ईर्षा रूपी बीमारी भाग जाएगी। ठीक है, कौन? कौन सा माला? तो माला में 5 वैरायटी के फूल है, तो वैजयंती माला कहते हैं इसको, 5 अलग अलग वैरायटी के फूल होना चाहिए। जिस माला भगवान पहनते हैं वैजयंती च माला, वैजयंती माला जो भगवान श्री कृष्ण पहनते थे, तो गोपियां लोग ने वृंदावन से फूल तोड़कर वृंदावन के जंगलों से पांच कम मिनिमम पांच वेरायटी अलग अलग फूल होना चाहिए, वैसे ज्यादा हो सकता है, मिनिमम कम से कम पांच वेरायटी अलग अलग सुगंधित पुष्प की माला को ही वैजयंती माला कहते हैं। ठीक है हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। आगे ऐसा प्रसंग आता है कि जब
जोर से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज। आज आगे ऐसा प्रसंग आता है कि जब
कुछ समझ में नहीं, यहां तक आवाज नहीं आता, पास में आ जाओ। ठीक है, वो जब अभी चर्चा होगा तो उसमें इस क्वेश्चन क्लास है, वो बता रहे पूछ रहे कि लक्ष्मी जी ने जब हिरण्यकशिपु को वध कर दिया, भगवान क्रोधित रूप में नृसिंहदेव थे, तो लक्ष्मी जी को भेजे तो लक्ष्मी जी ने क्यों नहीं गए, कह रहे थे कि मैं ऐसे अद्भुत रूप कभी नहीं देखा। तो चर्चा आगे होगा, ठीक है, अगला क्लास में। और कोई हम नहीं कहा, वो सिद्ध मैंने सुखदेव गोस्वामी कह रहे हम साधारण कृष्ण भक्त जन सिंह कथा को हम सुनते हैं तो भक्ति की बाधाओं को नष्ट करने के लिए। भक्ति प्रभुपाद जी ने इस नृसिंह मंत्र सबसे पहला दिया कहां पर है? सांस फ्रांसिस्को रथ यात्रा में। सांस फ्रांसिस्को रथ यात्रा में जो कुछ ब्लैक गुंडे थे तो धमकी दिए कि हम तुम्हारे गुरु को अटैक करेंगे यदि तुम लोग रथ यात्रा बंद नहीं करोगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कैसे भी तो छुप के चले गए थे पीछे से, ब्रह्मानंद प्रभु और गोमनी ले गए रथ में पूरा चढ़ गए, पता लगे प्रभुपाद जी ने रथ पर आ गए तो वो लोग ने आ रहे थे फाइटिंग करने शुरू कर दिए। भक्त लोग कुछ फाइटिंग करते थे हमेशा, तो उस समय प्रभुपाद ने कहे कि मैं आज एक नया मंत्र आप लोग को दे रहा हूं, उस मंत्र की यदि आप गायन करोगे तभी सभी प्रकार का विघ्न नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहला नृसिंह मंत्र वहीं गाए थे, रथ के ऊपर गाए, सभी लोग को बोले आप लोग इसको दोहराओ। जब नृसिंह मंत्र गाए तो ठीक नृसिंह प्रार्थना समाप्त होते ही पुलिस की गाड़ी आ गई, उनको सब पिटाई करके ले गए, उनको अरेस्ट करके ले गए। तो इसलिए सभी को पूरा विश्वास हो गया कि नृसिंह ये मंत्र यदि हम गाएंगे हमारे भक्ति में जो कुछ बाधा विघ्न भगवान की सेवा में वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम जो कृष्ण भक्त है तो हम सब प्रार्थना करते हैं नृसिंहदेव को भक्ति विघ्न बिना नाश, क्योंकि भौतिक जगत में से गणेश को प्रार्थना करते हैं विघ्न नाश करने के लिए, लेकिन गणेश देव की भी आराध्य देव है कौन? नृसिंहदेव। नृसिंहदेव से शक्ति प्राप्त करते हैं विघ्न को नष्ट करने के लिए। तो इसलिए भक्ति विघ्न को नष्ट करने के लिए हम डायरेक्ट नृसिंहदेव की शरण में आते हैं। ऐसे विष्णु तत्व में किसको छोटा किसको बड़ा नहीं माना ही जाता है, तो इसलिए नृसिंहदेव का हम यदि हमारा भक्त का इच्छा है कि गोलोक वृंदावन जाना है, लेकिन फिर भी भक्ति के मार्ग पर जो बाधा विघ्न है उसको नष्ट करने के लिए नृसिंहदेव के हम शरण में जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।